एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास पर बात करने वाले हैं, एडविश डैंटिकेट की पहली कृति ब्रेथ आइज मेमोरी।
जी हाँ, डैंटिकेट एक हैती अमेरिकी लेखिका है। जन्म पोर्ट ओ प्रिंस में हुआ, फिर वो ब्रुकलिन आ गईं और उनका लेखन खासकर हैती और वहां से बाहर बसे लोगों के अनुभवों को बड़ी गहराई से छूता है।
बिल्कुल, बहुत काव्यात्मक भाषा है उनकी। और ये उपन्यास ब्रेथ आइज मेमोरी 1994 में आया था। ये उनकी आवाज की पहली, कह सकते हैं, दमदार पेशकश थी।
सही कहा। और ये सिर्फ एक मतलब एक लड़की के बड़े होने की कहानी नहीं है या सिर्फ एक अप्रवासी का अनुभव, उससे कहीं ज्यादा है इसमें।
हाँ, इसमें पहचान का सवाल है, वो राजनीतिक हिंसा के जख्म।
बिल्कुल, वो ड्यूविलियर तानाशाही का जो साया है हैती पर।
और माँ बेटी के रिश्ते बहुत ही उलझे हुए।
हाँ, और ड्रांटिकेट इन सब विषयों को बड़ी ईमानदारी और कह सकते हैं सहानुभूति से बुनती हैं।
और इसे पहचान भी खूब मिली, खासकर 1998 में जब ये ओपरा बुक क्लब सिलेक्शन बना।
जी, इसे कैरिबियन और अमेरिकी साहित्य दोनों में ही एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी को, इसके पात्रों की यात्राओं को और जो मुख्य विषय हैं, जो संदेश हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझें।
हाँ, और शायद थोड़ा हैती की उस पृष्ठभूमि पर भी बात करनी होगी, वो ड्यूवेलियर वाला दौर जो कहानी में सीधे न होते हुए भी हर जगह मौजूद है।
बिल्कुल, तो चलिए कहानी में चलते हैं। किरदार है सोफी का को।
हाँ, कहानी शुरू होती है हैती के एक छोटे से गांव क्रॉइक्स डिसरोजेट्स से। यहाँ हम सोफी से मिलते हैं, एक छोटी बच्ची है और उसका पालन पोषण उसकी चाची तांते आती कर रही हैं।
तो माँ कहाँ है?
माँ मार्टिन, वो न्यूयॉर्क में है। सोफी ने उन्हें कभी देखा नहीं है। 12 साल की सोफी के लिए माँ बस एक नाम है, एक तरह की मिथकीय हस्ती। उसकी दुनिया तो चाची आती, गांव की परंपराएं, कहानियां, वो गन्ने के खेतों की महक, इन सब से बनी है।
तो एक तरह का सुरक्षित, जाना पहचाना
हाँ
माहौल है शुरुआत में।
हाँ,
गरीबी है, राजनीतिक अस्थिरता भी होगी शायद,
पर एक अपनापन है, जड़ों से जुड़ाव है। तांते आती और सोफी का रिश्ता बहुत गहरा है। माँ जैसी है वो उसके लिए।
और वो कहानियां सुनाती हैं।
हाँ, बहुत कहानियां, जैसे वो दिव्य जुड़वा बच्चों, मरासास की कहानी या उस औरत की कहानी जिसके पंख उसके पति ने जला दिए थे। और इन कहानियों में ना अक्सर आगे क्या होने वाला है उसके इशारे छुपे होते हैं।
जैसे?
जैसे वो कहती हैं कि कौमार्य औरत की सबसे कीमती संपत्ति है। ये बात आगे जाकर कहानी में बहुत मायने रखती है।
तो ये एक शांत स्थिर दुनिया है, लेकिन फिर कुछ बदलता है।
हाँ बिल्कुल, सोफी 12 साल की होती है और न्यूयॉर्क से एक चिट्ठी आती है, माँ मार्टिन ने भेजी है, साथ में हवाई जहाज का टिकट भी है।
ओहो, मतलब अमेरिका बुलावा।
हाँ, मार्टिन उसे अपने पास बुला रही है और ये सोफी के लिए एक भूकंप जैसा है। उसे अपनी चाची, अपना गांव, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर जाना है।
जाहिर है बहुत मुश्किल रहा होगा, यहीं से वो विस्थापन, वो पहचान का संकट शुरू होता है जिसकी बात हम कर रहे थे।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये अपनी जड़ों से उखड़ने जैसा है, एक जानी पहचानी दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरफ।
तो उपन्यास का दूसरा भाग आइज यानी आंखें इसी न्यूयॉर्क के अनुभव पर है।
जी, सोफी ब्रुकलिन पहुंचती है और वो हैती का जो रंगीन जीवंत माहौल था और ब्रुकलिन का ये ठंडा भूरा कुछ अलग थलग सा माहौल, बहुत बड़ा फर्क है।
और माँ से मुलाकात, मार्टिन कैसी है?
मार्टिन वो सोफी की कल्पना से बिल्कुल अलग है, एक अजनबी, एक गहरी चोट खाई हुई औरत। उसका व्यवहार समझ से परे है।
मतलब किस तरह का व्यवहार?
कभी तो वो बहुत प्यार करती है सोफी से, लेकिन फिर अचानक उसे भयानक बुरे सपने आते हैं, वो चीखती है या फिर एकदम से गहरे गुस्से और उदासी में डूब जाती है। सोफी बस उसे समझने की कोशिश करती रहती है।
लेकिन इस हिस्से का जो सबसे झकझोरने वाला पल है वो है परीक्षण।
हाँ, वो टेस्टिंग, जब मार्टिन जबरदस्ती सोफी की कौमार्यता की जांच करती है। ये कहानी का एक बहुत ही काला और अहम मोड़ है।
ये महज एक घटना नहीं है, है ना? इसका मतलब क्या है उपन्यास में?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक प्रतीक है, बहुस्तरीय प्रतीक। ऊपर से देखें तो हाँ, कौमार्या की जांच है, लेकिन असल में ये उस विरासत में मिले दर्द का, उस ट्रॉमा का भौतिक रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी औरतों पर थोपा जाता रहा है।
मतलब सुरक्षा के नाम पर ही?
हाँ, सुरक्षा का एक बहुत ही बिगड़ावा विकृत रूप जो खुद ही दमन बन जाता है। माँ का डर बेटी के शरीर पर नियंत्रण बनकर सामने आता है और ये सोफी की मासूमियत को पूरी तरह तोड़ देता है। उसके अपने शरीर के साथ जो रिश्ता है उसमें जहर घोल देता है।
इसका असर क्या होता है सोफी पर? वो कैसे रिएक्ट करती है?
असर बहुत बुरा होता है। उसके अंदर अपने शरीर को लेकर डर, घिन, शर्म, ये सब बैठ जाता है। उसे यौन चिंता होने लगती है और बाद में हम देखते हैं वो बुलीमिया का शिकार हो जाती है।
बुलीमिया मतलब वो ईटिंग डिसऑर्डर?
हाँ, और आत्म नुकसान भी। ये सब एक तरह से अपने शरीर पर काबू पाने की हताश कोशिशें हैं, उस शरीर पर जिस पर उसे अपना हक महसूस नहीं होता।
पर आपने कहा था कि डैंटी कैट के पात्र सिर्फ पीड़ित नहीं होते, तो क्या सोफी इसका कोई विरोध करती है?
करती है, अपने तरीके से। वो अपने पड़ोसी जोसेफ के साथ जानबूझकर यौन संबंध बनाती है, शायद शायद अपनी माँ के उस जुनून को तोड़ने के लिए कि देखो अब मैं वो कुवारी नहीं रही जिसकी तुम्हें इतनी फिक्र है।
ये एक तरह का दुखद विद्रोह है, अपनी एजेंसी वापस लेने की कोशिश।
हाँ, कह सकते हैं एक हताशा भरा कदम।
यहाँ पर मार्टिन को थोड़ा और समझना जरूरी है, वो इतनी क्रूर क्यों है? उसके अपने जख्म क्या हैं?
सही बात है, मार्टिन सिर्फ जालिम नहीं है, वो खुद एक शिकार है। बाद में पता चलता है कि जब वो हेती में किशोरी थी तो गन्ने के खेत में उसका बेरहमी से बलात्कार हुआ था।
ओह,
और वो भयावह अनुभव उसने मार्टिन को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे शायद PTSD था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके वो बुरे सपने, वो गुस्सा, वो अस्थिरता, सब उसी ट्रॉमा का नतीजा थे।
तो क्या क्या वो जो परीक्षण करती है वो उसी की प्रतिक्रिया है?
लगता तो यही है। शायद उसकी मंशा सोफी को दुख देना नहीं थी, वो शायद उसे उसी दर्द से बचाना चाहती थी जिससे वो खुद गुजरी थी। उसे लगता था कि अगर सोफी कुंवारी रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। ये सुरक्षा का एक बहुत ही भयानक बिगड़ा हुआ आइडिया है।
प्यार के नाम पर दिया गया जख्म।
बिल्कुल, उसका प्यार है पर वो दम घोटू है, नुकसानदेह है, सोफी को तोड़ देता है।
और मार्टिन खुद भी इस अतीत से उभर नहीं पाती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जाता है, वो लगभग पागलपन की हद तक पहुंच जाती है और अंत में वो आत्महत्या कर लेती है।
ये बहुत दुखद है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, तीसरा भाग है मेमोरी, स्मृति।
हाँ, अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। सोफी बड़ी हो गई है, उसने जोसेफ से शादी कर ली है, वही पड़ोसी। उनकी एक बेटी भी है, ब्रिजिट।
तो अब जीवन ठीक है, व्यवस्थित है?
ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, एक पति है जो उसे प्यार करता है, एक बेटी है, लेकिन वो अतीत का साया अब भी है। वो जोसेफ के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से। उसे लगता है कि वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वो अपने परिवार के दर्द की जड़ों का सामना नहीं करती।
तो वो क्या करती है?
वो हैती वापस जाती है अपनी बेटी ब्रिजिट को लेकर। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये अपनी जड़ों की ओर, अपनी यादों की ओर वापसी है।
और वहां कौन मिलता है उसे?
वहां वो फिर से अपनी चाची तांते आती से मिलती है और पहली बार अपनी दादी ग्रैंडमा इफे से।
दादी इफे? और यहीं पर कुछ राज खुलते हैं।
हाँ, ये इस यात्रा का और शायद उपन्यास का भी सबसे अहम मोड़ है। ग्रैंडमा इफे जो अब तक चुप थी, वो सच बताती है। वो सोफी को मार्टिन के बलात्कार की पूरी कहानी सुनाती हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो ये भी बताती हैं कि ये जो परीक्षण करने की परंपरा है, ये उन्होंने ही शुरू की थी।
दादी ने? पर क्यों?
दादी कहती हैं कि उन्होंने ये अपनी बेटियों को मर्दों की हिंसा से और समाज की नज़रों में गिरने से बचाने के लिए किया था। एक भटका हुआ विश्वास था कि अगर वो उनकी कौमार्यता पर नियंत्रण रखेंगी तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी।
ये तो बहुत बड़ी बात है, सूफी पर इसका क्या असर होता है?
जाहिर है वो हिल जाती है, लेकिन ये खुलासा ना मार्टिन के या दादी के कामों को सही नहीं ठहराता, पर ये सोफी को एक संदर्भ देता है। उसे समझ आता है कि उसकी माँ का दर्द कहाँ से आया था। वो अपने परिवार की औरतों को सिर्फ जख्म देने वाली नहीं, बल्कि दर्द की एक लंबी कड़ी में साथी पीड़ितों के तौर पर देख पाती है।
तो ये उसके नज़रिए को बदलता है?
हाँ, ये उसकी अपनी पहचान को समझने में, अपनी ज़मीन से दोबारा जुड़ने में मदद करता है।
अगर हम सोफी की पूरी यात्रा को देखें, मासूमियत से शुरू होकर फिर आघात, फिर वो पीड़ित अवस्था, फिर बुलीमिया, आत्मनुकसान और फिर धीरे धीरे ये समझ, ये उपचार की कोशिश। बहुत मुश्किल सफर है।
बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें थेरेपी की भूमिका भी है, जोसेफ का साथ, उसका प्यार और धैर्य, और सबसे बढ़कर हेती वापस जाकर सच का सामना करने का उसका फैसला। ये सब मिलकर उसे बदलते हैं और अंत में वो ये तय करती है कि वो अपनी बेटी ब्रिगिट के साथ वो नहीं होने देगी, वो चुप्पी के इस सिलसिले को तोड़ेगी।
इसमें सहायक किरदारों का भी बड़ा हाथ है। तांते आती तो हैं ही, वो जड़ों का, पारंपरिक प्यार का प्रतीक। ग्रैंडमी इफे के बारे में क्या कहेंगे?
ग्रैंडमी इफे ताकत का प्रतीक है, परिवार की मुखिया, लेकिन उनमें सच बोलने का साहस भी है, अपनी गलती मानने का साहस। वो दिखाती हैं कि परंपरा पत्थर की लकीर नहीं होती। और जोसेफ, वो बाहरी दुनिया है, वो स्वस्थ प्यार है, वो मदद की संभावना है।
अच्छा, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द ट्रायल। ये हमें वापस न्यूयॉर्क लेता है और मार्टिन के अंत की ओर।
जी,
इस हिस्से में मार्टिन की हालत बहुत बिगड़ जाती है। उसे वहम होने लगते हैं, पैरानोया। उसे लगता है कि उसका बलात्कारी, जिसे वो मैकआउट कहती है,
मैकआउट
ये ड्यूविलियर के मिलिशिया वाले,
हाँ,
उसे लगता है वो उसे ढूंढ रहा है, उसका पीछा कर रहा है। उसका अतीत उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है
और फिर वो आत्महत्या,
बहुत ही हिंसक तरीके से।
हाँ, वो खुद को 17 बार चाकू मारती है। कहते हैं बलात्कार के बाद उसने जितने साल जिए, हर साल के लिए एक बार। ये जैसे उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द, सारा गुस्सा एक विस्फोट की तरह बाहर आता है। वो अपने अतीत से भाग नहीं पाती, उसी में खो जाती है।
इस भयानक अंत का सोफी पर क्या असर होता है?
दुख तो होता ही है, अपराध बोध भी होता है, लेकिन मार्टिन की मौत उसे एक तरह की क्रूर स्पष्टता भी देती है। उसे समझ आता है कि चुप्पी की कीमत क्या होती है, विरासत में मिला दर्द कितना जानलेवा हो सकता है।
लेकिन उपन्यास का अंत पूरी तरह नौमीदी भरा नहीं है।
नहीं, सोफी एक बहुत अहम फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो अपनी बेटी ब्रिजिट को अपने परिवार की औरतों की पूरी कहानी बताएगी, दर्द भरी, मुश्किल, लेकिन सच्ची कहानी। वो चुप्पी की जगह कहानी कहने को चुनती है, और इसी चुनाव में एक उम्मीद है, एक मुश्किल उम्मीद।
चलिए, अब थोड़ा विषयों पर बात करते हैं। सबसे बड़ा थीम तो शायद यही है, विरासत में मिला आघात, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रॉमा।
बिल्कुल, ये उपन्यास की रीढ़ है। डेंटिकैट दिखाती हैं कि कैसे हिंसा, खासकर यौन हिंसा, और उसका मनोवैज्ञानिक असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता, वो माँ से बेटी तक जाता है। वो परीक्षण इसी का प्रतीक है, और ये अनकहा दर्द रिश्तों में कैसे जहर घोलता है, और इसे तोड़ने के लिए अतीत का सामना करना ही पड़ता है।
माँ बेटी के रिश्ते भी बहुत अहम हैं, इतने शक्तिशाली पर उतने ही जटिल, दर्द भरे।
हाँ, प्यार भी है पर नियंत्रण भी है, सुरक्षा की भावना भी है पर घुटन भी है। डेंटिकैट दिखाती हैं कि कैसे माँ की सुरक्षा की इच्छा ही जुल्म बन सकती है, खासकर जब माँ खुद ट्रॉमा से गुजर रही हो। सोफी का अपनी बेटी के लिए एक अलग रास्ता चुनना, ये इसी जटिलता का जवाब है।
पहचान का सवाल, डायस्पोरा, वो दो दुनियाओं में बटा होना,
हाँ,
ये भी बार बार आता है।
हाँ, सोफी हमेशा हेती और अमेरिका के बीच फंसी महसूस करती है। तांते आती की वो सलाह दो चेहरे रखने की, और हेती की लोक कथाओं में वो मरासा, दिव्य जुड़वा, ये सब इसी दोहरेपन को दिखाते हैं। इन दो पहचानों को जोड़ना, यही सोफी की चुनौती है।
और कहानी कहने की ताकत,
हाँ,
बनाम चुप्पी का खतरा,
निश्चित रूप से। परिवार का वो राज, मार्टिन का बलात्कार, जब तक वो छुपा रहता है दर्द बढ़ता जाता है। जब कहानी कही जाती है, जब ग्रैंडमी इफे बोलती हैं, तब जाकर कुछ राहत मिलती है, उपचार शुरू होता है। कहानी कहना यहाँ सिर्फ यादें बताना नहीं है, ये एक तरह का प्रतिरोध है, खुद को वापस पाने का तरीका है। सोफी खुद कहानीकार बनती है।
एंटीकैट की लिखने की शैली की भी बात होनी चाहिए, वो सोफी के नजरिए से लिखती हैं, फर्स्ट पर्सन में।
हाँ, इससे हम सीधे सोफी के मन में उतर जाते हैं, उसके डर, उसकी उलझन, उसकी उम्मीदें, सब हम महसूस करते हैं।
और कहानी सीधी नहीं चलती, फ्लैशबैक हैं, लोक कथाएं हैं।
हाँ, कहानी आगे तो बढ़ती है पर अतीत बार बार लौट कर आता है, यादें हैं, कहानियां हैं। डेंटिकैट दिखाती हैं कि अतीत कभी मरता नहीं, वो वर्तमान को लगातार गढ़ता रहता है।
भाषा बहुत काव्यात्मक है, सुनाए।
बेहद गीतात्मक, संवेदनशील। हैती का वर्णन रंगों, गंधों से भरा है। न्यूयॉर्क ज्यादातर ठंडा, बेरंग लगता है। ये फर्क भाषा से ही पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो भयानक हिंसा का जिक्र भी एक संयम और काव्यात्मकता से करती हैं। इससे एक अजीब सा असर होता है, सुंदरता भी लगती है और बेचैनी भी।
प्रतीक भी बहुत हैं, जैसे गन्ने के खेत।
हाँ, गन्ने के खेत है, खेती के जीवन का आधार भी है, मिठास भी देते हैं, लेकिन वो गुलामी के इतिहास और मार्टिन के भयानक बलात्कार की जगह भी हैं, तो उनमें पोषण भी है और गहरा जख्म भी।
और वो डैफोडिल्स जो मार्टिन न्यूयॉर्क में उगाने की कोशिश करती है।
हाँ, वो पीले फूल जो उस ठंडी जगह उग नहीं सकते, ये मार्टिन की कोशिश है अपने भयानक अतीत पर एक झूठी सुंदरता थोपने की, और ये उसकी नाकामी का भी प्रतीक है नई जमीन पर जड़े जमाने में ठीक होने में।
और वो मुरासाज जुड़वा बच्चे,
हेती में उन्हें पवित्र मानते हैं। उपन्यास में ये सोफी की दोहरी पहचान, माँ बेटी के उलझे रिश्ते और कैको औरतों की एक दूसरे से जुड़ी नियति का प्रतीक है, और शीर्षक खुद ब्रेथ आईज मेमोरी, सांस यानी जीवन, कहानियां आंखें यानी गवाही, सच और स्मृति यानी वो इतिहास जो हमें बनाता है।
कुछ पंक्तियां बहुत यादगार हैं, जैसे कुछ चीजें इतनी अक्षम्य होती हैं कि वे अन्य चीजों को आसानी से क्षम्य बना देती हैं।
ये सोफी तब सोचती है जब उसे माँ के बलात्कार का पता चलता है। उस मूल का घात के सामने माँ का बाकी व्यवहार वो माफ करने लायक तो नहीं होता, पर समझ में आने लगता है, एक टूटी हुई प्रतिक्रिया।
और वो जो तांते आती कहती हैं, हम सब कहानीकार हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम क्या कहते हो।
ये शुरू में ही कहानी की ताकत बता देता है, कहानियां हमें बनाती हैं, और सोफी की पूरी यात्रा इसी से जुड़ी है। वो दूसरों की कहानियों से बनती है और फिर अपनी कहानी कहकर खुद को रचती है।
और ये पंक्ति, मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ सांस, आंखें और स्मृति एक हैं, जहाँ आप अपने अतीत को अपने सिर के बालों की तरह ढोते हैं।
ये उपन्यास के अंत में है और ये उस विरासत में मिले आघात का सार है। अतीत कैसे हमारी रगों में बहता है, कैसे हम उसे अपने बच्चों को देते हैं, और उस चक्र को तोड़ने की मुश्किल।
इस उपन्यास को पढ़ना कैसा अनुभव है भावनात्मक रूप से?
ये आसान नहीं है, बहुत गहरा है, विचलित करने वाला है, हिंसा दुख दर्द का खुला चित्रण है, लेकिन डैंडीकैट की लेखनी में इतनी सहानुभूति है कि आप पात्रों से जुड़ जाते हैं, उनके दुख और उनकी हिम्मत दोनों को महसूस करते हैं, एक गहरी करुणा महसूस होती है।
और आखिर में क्या रह जाता है पाठक के पास?
एक आसान जवाब नहीं मिलता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मार्टिन का अंत बताता है कि कुछ जख्म शायद कभी नहीं भरते, लेकिन सोफी का जिंदा रहना, उसका सच बोलने का फैसला, ये उम्मीद देता है। ये मानवीय जिजीविषा का, बदलाव की क्षमता का प्रमाण है। ये किताब यादों, माफी, जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करती है।
सचमुच ये दिखाता है कि कितना भी मुश्किल अतीत हो, अपनी आवाज ढूंढना, अपनी कहानी कहना कितना जरूरी है।
हाँ, और शायद उसी में, उसी कहने में ही उपचार की शुरुआत होती है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर सच कह देना ही बेहतर है, या कुछ बोझ इतने भारी होते हैं कि उन्हें उठाना ही एक संघर्ष है।
ये एक अहम सवाल है जो उपन्यास पाठक पर छोड़ देता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।